ओम शांति। हमारा सौभाग्य है कि बाबा के अनन्य रतन विशेष आदरणीय राजू भाई जी हमारे बीच में हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वैसे तो सभी राजू भाई जी को जानते हैं, फिर भी संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे। आदरणीय भ्राता जी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं और 1972 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से आपने विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अपनी अथक सेवाएं दी। 1976 से दीदी मनमोहिनी जी के साथ में हिंदी मुरली को कंपोज करने और दादी जी की प्रेरणा से पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए जो हम मुरली रोज की सुनते हैं उसमें जो प्रश्न उत्तर सार वरदान स्लोगन होता है ये सब आपकी ही मेहनत का फल है, आप ही कंपोज करके लिखते हैं बाबा की मुरली से। और दादी जी का जो पत्र पुष्प हमें सेंटर्स पर प्राप्त होता है वो भी आपकी ही कलम द्वारा लिखी जाती है। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन हैं। आपके क्रिएटिव माइंड से बहुत सारी सेवाएं अथक रूप से चलती रहती हैं। आप पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट को भी संभालते हैं और देश और विदेश में अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों के अमूल्य खजानों से आपने भरपूर किया है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आप धीर गंभीर तो हैं ही, साथ साथ रमणीकता का बैलेंस भी लिए हुए हैं और बाबा व दादियों की आपने विशेष पालना ली है। और वो विशेष पालना जब आप क्लास कराते हैं तो इनके जो अनुभव हैं वो उसमें झलकती है और उसका लाभ सुनने वालों को मिलता है। आप अपने बाबा से जो मिले हुए वरदान हैं, दादियों से जो मिले हुए वरदान हैं, उनसे भरपूर करके मनन चिंतन करके ज्ञान रत्नों को अनुभवों के खजानों से श्रृंगारित कर हम आत्माओं के लिए तीव्र पुरुषार्थ हेतु सरल बनाकर प्रस्तुत करते हैं। और आज भी एक बहुत सुंदर टॉपिक को अपने अनुभव और मनन चिंतन के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है फरियाद नहीं निरंतर याद करो। आपके लिए जो संक्षिप्त में परिचय है उसको यदि चार लाइनों में पिरूं तो मैं कहना चाहूंगी, साकार में शिव की मुरली हम सब ने सुनी है, साकार में ब्रह्मा बाबा के मुख से नहीं सुनी ना, तो साकार में शिव की मुरली ब्रह्मा के मुख से सुनी नहीं, अव्यक्त वाणियां भी आरंभ की बहुतों को सुनने को मिली नहीं, किंतु आपकी अथक सेवा से, आपकी अथक सेवा से आंखों को सुर मिल जाते हैं, जो हम पढ़ते हैं ऐसे लगता है जैसे बाबा से ही सुन रहे हैं, नहीं कोई जिसने पढ़ करके श्रीमत की धुन गुनी नहीं, मुरली का सार हो, मुरली का सार हो या प्रश्नोत्तर, गीत सुरजीत कर देते हैं धारणा वरदान और स्लोगन, दिन की नींव भर देते हैं, दिन की नींव भर देते हैं। हे मुरलीधर के, हे मुरलीधर के मास्टर मुरलीधर, हे मुरलीधर के मास्टर मुरलीधर, हे दादियों के पत्र पुष्पों के माली, आपकी लेखनी से मूर्त हुए शब्द दूर बैठे भी मधुबन को हमारे समक्ष सजीव कर देते हैं, सजीव कर देते हैं। ऐसे आदरणीय भ्राता राजू भाई जी से अभी हम सुनेंगे, याद नहीं फरियाद नहीं निरंतर याद करो।
ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको याद की अनेकानेक युक्तियां बताई हैं। भक्ति में तो हम सब फरियाद ही करते रहे, अभी भी कोई कोई बाबा के बच्चे फरियाद करते हैं, अर्जियां डालते हैं, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, कोई भी विघ्न होगा, तो योग में क्या करते हैं, बाबा ये बीमारी ठीक कर दो, बाबा ये विघ्न हटा दो, बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, बाबा कभी कभी बहुत मीठी मुस्काते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं बच्चों को, कि जिन बच्चों को मैंने मास्टर बनाया, अपने समान बनाया, वो भी अभी तक कोई न कोई अर्जी लेकर के बाबा के पास आते हैं, फरियाद करते हैं, याद कम करते हैं फरियाद ज्यादा करते हैं। इसलिए हम सबको बाबा ने निरंतर याद और निरंतर सेवा की विधियां बताई हैं। संगम युग पर एक शब्द जो बार बार मुरलियों में या क्लासेज में हम सुनते हैं, योग योग, कई बाबा के बच्चे कहते हैं योग नहीं लगता, योग में बहुत मेहनत है। बाबा कहते बच्चे योग योग क्यों कहते हो, ये तो हठयोगियों का शब्द है, तो मुझे याद करो। और बाबा को याद करने के लिए कोई माला की, मूर्ति की, कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। जितना बाबा से स्नेह जुटता जाता है, जितनी प्राप्तियां होती हैं, जब हम प्राप्तियों का चिंतन करते हैं, स्मृति में रहते हैं, कैसी जीवन बाबा ने हम सबकी बनाई है, कहाँ से निकाला, क्या थे, क्या बनाया, तो बनाने वाले की याद तो स्वतः रहती है। अगर हम संगम युग की इस महान जीवन को देखें कि पहले की जीवन में और अभी की जीवन में कितना बड़ा अंतर आया, जब बाबा के बने उसके पहले क्या थे, कैसा खान पान था, कैसी चाल चलन, कैसी व्यवहारिक जीवन थी। बाबा ने अपना बच्चा बनाया, मुख वंशावली बनाया, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण बनाया, जो भी हमारी आदतें शूद्रपने की, विकारों की थी, निर्विकारी जीवन बना दी। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्तियां, हमारी स्मृति, हमारे बोल, हमारे कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार, बाबा का बनने के बाद सब कुछ बदल गया। पहला परिवर्तन तो दृष्टि का किया, जो देह भान में रहने के कारण दैहिक दृष्टि रहती थी, देह को देखना, देह के बारे में ही चिंतन करना, आपस में उसी की ही लेन देन करना, बाबा ने हमारी क्रिमिनलाइज को सिविलाइज्ड बना दिया। आत्मा को देखने का अभ्यास, ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, इसलिए न देह को देखते हैं, न देह का चिंतन करते हैं, हम सब आत्माएं हैं। दृष्टि परिवर्तन की और वृत्तियां जो इतनी चंचल थी, भटकने वाली थी, बैठते थे भगवान का ध्यान करने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कभी अपना अनुभव सुनाते हैं, भक्ति काल का अनुभव सुनाते हैं, कि जब मैं गुरु का ध्यान करने, भगवान का ध्यान करने के लिए बैठता था तो मन बहुत भटकता था, बुद्धि एकदम विचलित हो जाती थी, तो मैं अपने आप को चमाट मारता था, अपने को सुधारने की कोशिश करता था और अपने आप से बातें करता था, मेहनत करता था, हे मन, मंत्री, मेरे वजीर, तुम क्यों भटकता है, क्यों भटकाता है, तुम चंचलता क्यों करता है। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छी मेहनत करके मन और बुद्धि को एकाग्र किया। हम सब बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे अपनी वृत्तियों को अगर एकाग्र करना है तो कुछ व्रत ले लो। व्रत लोगे तो आपकी वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी। व्रत लेने का अभ्यास तो है भक्ति मार्ग में भी, लेकिन वो व्रत नहीं, खाया नहीं, पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया। वो व्रत तो अच्छा है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की वृत्तियों को चेंज करने के लिए व्रत दिया। एक बाबा दूसरा न कोई, एक की याद में रहो, एक बल एक भरोसा, एक के सिवाय और कोई स्मृति में ना आए। अगर ये व्रत ले लेते हैं तो हमारी वृत्तियां चंचलता को छोड़ देती हैं, स्थिर और एकाग्र हो जाती हैं। स्मृतियों में जो बहुत सारी बातें थीं, जो कोई कर्म इस जीवन में हुए, संस्कारों के आधार से जो स्मृतियां बनी, उनको तो हम बिंदी लगाने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन इस जीवन काल में जो भी कोई ऐसे कर्म हुए हैं, कर्म इंद्रियों से जो पाप कर्म हुए हैं, जिनकी स्मृतियां एकदम अंदर छप गई हैं, बाबा ने एक शब्द दिया है, अगर निरंतर योगी बनना है तो आज उस एक शब्द को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दृढ़ता के साथ अपनाने का प्रयास करना। दृढ़ता के साथ वो एक शब्द है, पॉइंट। पॉइंट जो कुछ बीता ड्रामा अनुसार, बीती को बिंदी लगा करके फुल स्टॉप, पॉइंट। अभी बीती को चितवो नहीं, बीती का चिंतन नहीं करो, नहीं तो बैठते हैं बाबा की याद में और जो कुछ बीती बातें हैं वही याद आती रहती हैं। बाबा की याद कई बार एक घंटे के योग में 5 मिनट भी यथार्थ याद नहीं रहती। और बाबा अपने बच्चों के नब्ज को जानता है, इसलिए कहता है कि मेरे बच्चे मुझे प्यार से 5 मिनट भी याद नहीं करते। आप कहेंगे ऐसा बाबा क्यों कहता है? यथार्थ याद जो कही जाती है वो यथार्थ याद पॉइंट बन करके पॉइंट को याद करना। मैं आत्मा पॉइंट हूं उस स्वरूप में स्थित हो जाना, पॉइंट स्वरूप में स्थित होकर के शिव बाबा को पॉइंट रूप में याद करना और जो बीत गई बात उसको पॉइंट लगा देना। अगर ये सब स्मृति रहती है तो बाबा कहता है तुमको फुल पॉइंट्स मिल जाएंगे। कितना अच्छा शब्द है, लेकिन क्या कहें, लेकिन जब कोई बातें आती हैं, प्रश्नों की बौछार हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, संकल्पों की लंबी क्यों लग जाती है, फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता ले लेते और फिर इतने भटक जाते हैं, इतने परेशान होते हैं। कहते हैं हम बैठते तो बाबा की याद में हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता, ये विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, ये होता है। तो आप हम सभी बाबा के बच्चे शिव जयंती के महत्व को जानते हैं, भक्ति मार्ग में कितनी अच्छी यादगार है, जहाँ शिवालय होते हैं शिव बाबा पर हमेशा ऊपर से जल की बूंद 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 टपकती है। हम सभी इस बूंद को, इस बिंदु के महत्व को समझें। बाबा ने हम सबको अभी वर्तमान समय अपनी सबसे महान शक्ति संकल्प शक्ति पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। संकल्प ही एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार से आप साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा कर सकते हैं। इस संकल्पों को दबाना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन इसको एक नई दिशा देनी है। जितना हम इसको नई दिशा देते हैं, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प करते हैं। बाबा की पॉइंट्स को याद रखना, एक पॉइंट लगाना, दूसरा बाबा की पॉइंट्स को याद रखना, तीसरा पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना, और चौथा पॉइंट रूप में बाबा को देखना, उनको याद करना। तो बाबा की मुरलियों की पॉइंट्स सारा दिन मन में अगर चलती रहती हैं, इसीलिए एक नियम बनाया गया कि सभी बाबा के बच्चे सवेरे सवेरे कार्य व्यवहार में जाने के पहले अपने चिंतन धारा को बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ बना करके, सकारात्मक बना करके फिर कर्म क्षेत्र पर जाएं। उसके लिए हर सेवा केंद्र पर प्रातः काल की मुरली का बहुत बड़ा महत्व है। कोई कोई सेंटर्स पर माताएं सवेरे नहीं आ पाती हैं, उनके लिए दोपहर को मुरली क्लास होती है या शाम को भी होती है, लेकिन ईश्वरीय नियम अनुसार हम सबको प्रातः काल की मुरली पर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्लास में जाके सुनते हैं उसका अपना महत्व है, कोई कारण है कोई बात है नहीं जा सके तो सवेरे अपनी बुद्धि को अच्छी अच्छी पॉइंट से, बाबा की मुख्य पॉइंट से भरपूर कर लेना चाहिए। बाबा की मुरली एक ऐसा जादू मंत्र है, कई बार हमें कई भाई बहने सुनाते हैं कि जो प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे उसी दिन की मुरली में उन प्रश्नों का समाधान मिला। क्या जादू है? वो बाबा जादूगर है, वो जानता है। लेकिन अगर बाबा के बच्चे बहुत प्यार से उसी भावना से सवेरे सवेरे बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो जो प्रश्न होते हैं या जो परिस्थितियां सामने आने वाली होती हैं उन सब का समाधान उसी दिन की मुरली में या वरदान में मिल जाता है। ऐसा अनुभव है ना? किसका किसका अनुभव है, हाथ उठाओ, सभी का, कोई का नहीं भी होगा, लेकिन लगभग मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ाने वाला बाबा है, बच्चे उसके हैं, भले निमित्त मुझे आत्मा को बनाया, लेकिन अभी हम फरवरी मास में हैं, मई में क्या होगा मुझे क्या पता है। अभी मेरी मुरलियां मई की तैयार हो रही, मेरे हाथ में मई की मुरलियां चल रही हैं, तो 3 महीने पहले से सब तैयारी, वरदान लिखना, स्लोगन लिखना, उसको सेट करना, वो करना पड़ता है। सारे विश्व को एक साथ लेके चलना है, ट्रांसलेशन होगी, पोस्ट प्रिंट होगी, पोस्ट होगी, क्या किस दिन बाबा को सुनाना है, क्या बच्चों के आगे पेपर आएंगे उसका उत्तर देना है, तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन अगर आप सब अपने विचारों को सकारात्मक बना लें, श्रेष्ठ चिंतन से विचारधाराओं को भर लें, तो योग कोई बड़ी बात नहीं है। योग योग कह करके हम क्यों भारी होते हैं? बाबा की याद स्वतः और निरंतर रहती है। सिर्फ 4 बातें मैं आपके ध्यान पर देता हूं। 1 है बाबा की आज्ञाएं। वैसे भी लौकिक में बच्चे अगर आज्ञाकारी सपूत होते हैं तो माँ बाप का बहुत प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, बच्चे का बाप के साथ बहुत नजदीक का रिश्ता जुटता जाता है, संबंध हो जाता है, एक बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा सपूत है, बड़ा आज्ञाकारी है, वो प्यार करे मैं उसको याद करूं, वो मुझे याद करे मैं उसको प्यार करूं, यही तो योग है और क्या है, और कुछ है क्या? लेकिन योग शब्द कह के समझते हैं मैं बिल्कुल कहीं कोई ट्रांस का अनुभव कर लूं, कहीं साक्षात्कार हो जाए, कुछ देख लूं, ये वास्तव में कोई देखने की साक्षात्कार करने की विधि नहीं है योग। लेकिन एक मन के अंदर आंतरिक खुशी है, नशा है, उमंग है और अपने स्वस्वरूप का ध्यान है, हम देह नहीं हैं और हम देहधारी को याद भी नहीं कर रहे हैं, जब हम अपने अशरीरी स्थिति में स्थित होकर अपने निराकार स्वरूप में टिक जाते हैं तो निराकारी स्वरूप में टिकते ही निराकार बाबा की याद नेचुरल आने लगती है। जैसे लौकिक में लौकिक संबंधों की याद, जितना जो देहमान में रहता है उसको बहुत सारे संबंध याद रहते हैं, ऐसे ही बाबा की आज्ञा है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, मां में कम याद करो, मुझे ही याद करो। तो हम सब पहली आज्ञा पर कितना खड़े हैं, कितना चल रहे हैं, अपने आप को चेक करना है। उसकी आज्ञा है बच्चे इस समय संगम युग पर, आप बच्चों ने जो अपने सिर पर अनेकानेक प्रकार की जिम्मेवारियों का बोझ ले लिया है वो बोझ मुझे दे दो, समर्पित करो। अगर बोझ समर्पित नहीं करोगे तो योग नहीं लगेगा। भारीपन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए सभी इस बात पर बहुत ध्यान देना, जब हमने कहा है मेरा बाबा, बाबा है कौन? कोई व्यक्ति, कोई देहधारी गुरु, उसको हम बाबा नहीं कह रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, जिसको हम कहें हजार भुजाओं वाला, हमारा मीठा बाबा शिव बाबा है, भोलानाथ है। भोला खुद नहीं है, भोलों का नाथ है, भोले बच्चों का नाथ है, जो सच्चे हैं, भोले हैं, उनका योग टूटता ही नहीं, वो सदा ही बाबा बाबा कहते मस्त रहते हैं। लेकिन जो बहुत बुद्धि चलाते हैं, एक है दिल की याद और एक है दिमाग की याद। मुझे याद आता है एक बार मुझे शुरू शुरू में जब मैं मधुबन में आया, कभी कोर्स तो किया नहीं था, परिवार में ही घर में ही ज्ञान था, गीता पाठशाला थी, कभी योग भी नहीं लिखा, कभी मुरली भी नहीं सुनी और डायरेक्ट मधुबन में आ गया। जब जैसे सब बैठते थे मैं भी ऐसे योग में बैठ जाता था, तो दीदी योग कराती थी, दीदी मनमोहिनी, और उनकी दृष्टि जब जाती थी तो एक एक को परख लेती थी, एक योग कैसे करते, योग क्या होता है। तो मेरे को एक दिन अलग से बुलाया, बहुत प्यार से पूछते तुम योग कैसे करते हो? तो मैंने कहा दीदी जैसे सब करते हैं ऐसे मैं करता हूं। तो बोली सब कैसे करते हैं? तो मेरे पास उत्तर तो था नहीं, लेकिन वो देखती थी बैठा तो है लेकिन सूखा सूखा है, चेहरे पर रौनक नहीं है। तो कहती थी एक योग है गोपियों वाला योग और एक योग है उद्धव वाला योग। अब मुझे उद्धव और गोपियों की कहानी तो मालूम नहीं थी, लेकिन दीदी ने कहा कि उद्धव जो था ना वो बहुत दिमाग वाला था, उसको बहुत ज्ञान था, समझ थी, और वो जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ डांस करती थी, उसको नचाती थी, बहुत मस्ती करती थी, तो उसको गुस्सा आता था, अरे भगवान इसको पहचानती नहीं है, उसके साथ ऐसे कर रही हैं। लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाती थी, वो सब सुख ले लेती थी, अतीन्द्रिय सुख तो उनका ही गाया हुआ है। तो तुम ऊधो की तरह योग क्यों करते हो? मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, वो परम धाम में रहता है, क्या लटके रहोगे क्या? अरे प्यार में खो जाओ, भावनाओं में समा जाओ, कौन मिला, क्या मिला, बाबा कहो, नैन गिले हो जाएं। और सचमुच ऐसी गोपी मालूम है, दीदी का लौकिक नाम गोपी था, गोपी, और वो एकदम बाबा कहे और बाबा के प्यार में ऐसे आंसू टपकने लगे, इतना दिल का प्यार, जिगरी प्यार, और उस प्यार में सब कुछ न्योछावर कर लिया, सब शुद्ध बुद्ध भूल गई, कोई देहधारी नहीं, एक वृत्ता बन गई। तो बाबा की जो पहली आज्ञा है योग के लिए, बहुत सच्चे दिल का प्यार चाहिए, सच्चे दिल का प्यार। बाबा तू मिला, संसार मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए? सिर्फ ऊपर ऊपर गाना नहीं है, लेकिन अंदर अंदर संगम युग पर जो बाबा से मिला है, मुझे लगता है कि कोई कहता ना ये करते हैं या आप ऐसे करते हैं, बायोडेटा लंबा लंबा बताते हैं, मैं सोचता हूं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कराने वाला करा रहा है, बाबा ने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है, सिर्फ ये ध्यान रखता हूं मैं उसका राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं, इस बुद्धि पर कोई की छाया और परछाया न पड़े, बस ये बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है, और वो बुद्धि को यूज करे, कर शरीर को यूज करे, कर्म इंद्रियों को यूज कर ले, मैं उसका, बाबा का ऐसा सपूत बच्चा बनूं जो हर कार्य में बाबा मुझे यूज करे, यही तो योग है। तो आप सभी इतने सपूत आज्ञाकारी डबल लाइट बनो, जो भी जवाबदारियां हैं ना, बोझ, इस महाशिवरात्रि पर ये बेल पत्र बाबा के ऊपर चढ़ा देना, चाह सकते हो कि ये मेरी जवाबदारी, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी खेती, मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ के बोझ लेकर के बैठते हैं योग में, और फिर कहते हैं क्या करूं, योग नहीं लगता। बाबा कहता मुझे दे दे बच्चे, मैं ले लेता हूं। एक बहुत रमणीक कहानी हमने पढ़ी थी, छोटी सी, कहते एक बार एक व्यक्ति बहुत सारा सामान लेकर के सिर पर जा रहा था, और दूसरा एक बैलगाड़ी में आराम से गीत गाते हुए बैलगाड़ी पे बैठे हुए झूमते हुए जा रहा था, तो उसको रहम आया कि बेचारा इतने समय से पैदल चल रहा है, बहुत सिर पर बोझ है, थक गया होगा। उसको कहा, भाई तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। तो व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई और गाड़ी में बैठ गया, लेकिन गाड़ी में बैठ करके वो जो सिर पर बोझ रखा था उतार ही नहीं रहा था, वो लेके बैठा हुआ था। तो उस भाई ने कहा, भाई तुम बैठे हो तो बोझ भी रख दो नीचे। कहता है, अगर बोझ रखूंगा तो आपके बैल थक जाएंगे, बैल थक जाएंगे, इसलिए बोझ सिर पर ही रखना है। अब हम सब कहते हैं संगम युग पर हम सब बाबा की गोदी में बैठे हैं, बाबा अपनी पलकों पर बिठा करके हमें उड़ा रहा है, ले जा रहा है, बैठे गोदी में है लेकिन सिर पर बोझ लेके बैठे हुए, क्या होगा? बाबा भारी हो जाएगा क्या? तो सब बोझ, सब जवाबदारियां कागज पर लिख देना, अब भोलानाथ के ऊपर चढ़ा देना, लो बाबा एक जवाबदारी, मैं तो तेरा हूं। दादा दादी बहुत बड़े नहीं बनो, बाबा कहता बच्चे बन जाओ, बच जाओगे, बच्चे बन जाओ, हम बाबा आपके बच्चे हैं। बच्चा कितना इनोसेंट है, बच्चा किस कोई चिंता नहीं करता, कोई चिंतन नहीं करता। जो संगम युग पर बेफिक्र वास्ता रहते हैं वो सहज योगी, निरंतर योगी स्वतः बन जाते हैं। अगर फिक्राते लेकर के बैठे हो, बोझ लेकर के बैठे हो, कहीं न कहीं नए नए बंधन बनाए हुए हैं। बहुत बंधन बनाते हैं लोग, बनने का समय निर्बंधन है। बाबा आया है ज्ञान योग दे करके, सिखा करके, सब बंधनों को काटने के लिए, हल्का बनाने के लिए। लेकिन बाबा के बच्चे इतने समझदार हैं, मेरी सेवा, मेरा जोन, मेरा सेंटर, ऐसा बंधन बांध रहे हैं जैसे पता नहीं क्या साथ लाए थे, क्या साथ ले जाएंगे। किस लिए बंधन? कराने वाला करा रहा है, जो सामने सेवा आती प्यार से करो, उमंग उत्साह से करो, खुशी से करो। लेकिन इसने इतना बढ़िया रिट्रीट सेंटर बनाया है, इसने इतना अच्छा सेंटर बना दिया, मुझे भी बनाना है। दिन रात लगे रहते, खुशी नहीं, योग नहीं, ज्ञान नहीं, किस लफड़ों में फंस गए। आए थे हरि भजन को, टन लगे कपास। क्या कर रहे हैं? ध्यान देना, बाबा करवाता है। अगर उसकी सेवा है, उसकी जरूरत है, आवश्यकता है, तो बाबा कहता है हर बच्चे की आवश्यकता संगम पर पूरी होनी है। लेकिन आगे का सेंटेंस सुनो, हर बच्चे की आवश्यकता पूरी होनी है लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और जहां इच्छाएं हैं वहां योग लगेगा ही नहीं। ये चाहिए, ये चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, बड़ा सेंटर चाहिए, अच्छे स्टूडेंट चाहिए, नाम, अरे क्या चाहिए। देने वाले ने बहुत कुछ दे दिया, भरपूर कर दिया, किसके पीछे भाग रहे हैं? मृग तृष्णा की तरह। कहानी सुनाता ना बाबा कई बार, मुरली के अंदर, सिंधी में उसको कहते हैं रुन्नी का पानी। ये जो रण होता है ना, रेगिस्तान, जब हिरण को प्यास लगती है, मृग को प्यास लगती है, तो रेत जो है बहुत चमकती है धूप में। जहां पर धूप पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो ऐसे लगता है यहां पर पानी है, और मृग अनजान में उसके पीछे भागता है, भागता है। गर्मी में पानी, प्यास लगी है पीने के लिए, वहां गया, फिर आगे दिखाई दिया, फिर उसके आगे दिखाई दिया, वो भागता रहता है, भागता रहता है, और आखिर अपनी जान वहीं पर पानी के पीछे दे देता, मिलता नहीं पानी। ऐसे ही संसार के अंदर इच्छाएं मृग तृष्णा के समान हैं, एक पूरी होगी दस खड़ी हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहता बच्चे इच्छाओं को कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो आवश्यकताएं हैं अपने आप पूरी हो रही हैं, कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं। बच्चों, बाबा के बच्चों की नहीं होंगी तो किसकी होंगी? आवश्यकता है अगर, मान लो भाई बड़ा सेंटर होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, बहुत स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, सब चाहते हैं, सबका तन मन धन का सहयोग है, बनाओ, कौन मना करता? लेकिन देखा देखी नहीं चाहिए, एक है दूसरा और बन जाए, उसके पास है मेरा भी बन जाए। कल बाबा परसों कह रहे थे बच्चे मेरे रेस करते करते कभी कभी रीस करने लगते हैं। इसलिए अगर सहज योगी जीवन, निरंतर योगी जीवन बनाना है, तो बंधनों को काटते जाओ। कोई भी बंधन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा, न देह का बंधन, न संबंधों का बंधन, न संस्कारों का बंधन, न वस्तुओं का बंधन, न सेवाओं का बंधन। जो आत्माएं अपने आप को निर्बंधन बना लेती हैं, ज्ञान और योग की शक्ति से बैठती हैं बाबा की याद में, और एक सेकंड में कनेक्शन जुट जाता, और सदा बाबा की याद बनी रहती है, मेहनत लगती ही नहीं। इसलिए बोझ और बंधन, इन दो चीजों को अगर छोड़ दिया तो सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। तीसरी बात है, इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। आज बाबा वरदान में कह रहे थे जब ये ब्राह्मण परिवार संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेगा, हर एक संतुष्ट और प्रसन्न रहना सीख जाएगा, तो उसकी तो प्रशंसा होगी लेकिन बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। सबसे महान गुण संगम युग पर है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अगर हम आत्माएं ऐसे नहीं, हम संतुष्ट हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्टता के तीन सर्टिफिकेट हैं। पहला सर्टिफिकेट है हम स्वयं से कहां तक संतुष्ट हैं। मनमौजी तो नहीं है, हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन श्रीमत प्रमाण चलते हुए, हर नियम और मर्यादा का पालन करते हुए मैं संतुष्ट हूं। मैं अपने आप को सर्टिफिकेट देता हूं कि मैं अमृत वेले से लेकर के रात तक की जो मर्यादाएं हैं, जो नियम हैं, जैसा बाबा ने कहा है वैसा मैं कर रहा हूं। ऐसे कितने लोग बैठे हैं आप, संतुष्ट हैं, स्वयं से संतुष्ट। और जिस परिवार में हम सब पल रहे हैं, चल रहे हैं, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, वो भी मेरे से संतुष्ट है। उसके लिए कौन सी चीज की जरूरत है? आपस में एक दो को रिगार्ड देने की, सम्मान देने की। आज दादियों ने जो सर्टिफिकेट लिया है, सब ने कहा मेरी दादी, मेरा बाबा। किस आधार से कहा? उन्होंने खुद के सम्मान में रह करके, सम्मान अपना कम नहीं किया, लेकिन खुद के सम्मान में रह करके सबको सम्मान दिया, चाहे छोटा है या बड़ा है। पहले कहते थे छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो, और आजकल तो छोटे भी सम्मान ही चाहते हैं। लेकिन हमारे दादियों ने बहुत दिल का सम्मान सबको दिया, और इतना सम्मान दे करके आज इतने बड़े यज्ञ को कितनी अच्छी तरह से संभाला, योग्य और योगी बना करके आज यज्ञ को कहां से कहां पहुंचाया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी ने ऐसी जोड़ी बनी आपस में, जो कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है, विचारों का कोई भी टक्कर नहीं। भले संस्कार भिन्न थे, लेकिन उनको मिलाया, समाया, और जो भी साथी आए, जो सेवा में सहयोगी बने, उन सब को सम्मान दिया, और सम्मान देकर के सबकी दुआएं ली। योग के लिए दुआओं की बहुत आवश्यकता है। अगर सहज योगी बनना है तो आप सब इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि कोई भी आत्मा मुझे बद्दुआ न दे, नहीं तो योग में बैठोगे और बद्दुआएं आपको ठक ठक करके बुद्धि को भटका देंगी। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, जो भी हमारे छोटे हैं, बड़े हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, हम इतना उनको प्यार और रिस्पेक्ट दे करके अपना बना करके सेवाएं कराएं और उनकी दुआएं ले लें। वो ये तो कहें ये हमारे लिए बड़े शुभ चिंतक हैं, दुआएं कोई बोल करके नहीं दी जाती, ये हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, बड़े शुभ चिंतक हैं, भले शिक्षाएं भी देते हैं लेकिन उनके अंदर भी प्यार है, रहम है, हमारे कल्याण के लिए मुझे कह रहे हैं। अगर अपने दिल का रिगार्ड एक दूसरे को देखते हैं तो यही सर्टिफिकेट है संतुष्टता का, और संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, यही है दुआएं लेना और दुआएं देना। जिसके पास दुआओं का स्टॉक है, बैठो योग में, इतना मजा आएगा, एक सेकंड में योग लग जाएगा। लेकिन अगर कोई डिस्टर्ब हो गया किसी कारण से, हमारे कोई एक्टिविटी से हमने उसको उतना समझा नहीं, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, कुछ ऐसे इस समय एक बहुत अटेंशन देने वाली बात है। कभी कभी हमारा अपने बोल पर कंट्रोल नहीं है, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। सामने वाले की स्थिति क्या है वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, लेकिन आज बाबा कह रहे थे पत्थर मार देते हैं, कटु वचन बोल देते हैं और उसके दिल को लग जाता है, वो दूरी बढ़ा लेता है, वो समीप नहीं आता है, बद्दुआएं देने लगता है और हमारा योग नहीं लगता। हम बैठे हैं बाबा की याद में, कहते हम योग कर रहे हैं, क्या योग करोगे आप। इसलिए बहुत ध्यान देना, आंतरिक खुशी, नशा, संतुष्टता और दुआएं, ये सब बाबा की आज्ञाएं हैं और इन आज्ञाओं पर चलने वाला सहज योगी, निरंतर योगी स्वतः बन जाता है। इन आज्ञाओं की अवज्ञा न हो, योग टूटेगा ही नहीं, लगा ही रहेगा। दूसरा शब्द एक आता है बाबा का, आज्ञाकारी के साथ साथ वफादार। उसकी बहुत वैल्यू है वफादारी की। हम सब जिसके बने हैं, जिसकी पालना में पल रहे हैं, उसकी यज्ञ पर, उसकी विशेषताओं पर कोई आंच ना आए। मरेंगे मिटेंगे, लेकिन अपने ईश्वरीय कुल का नाम रोशन करेंगे, कुछ भी हो जाए उस पर आंच आने नहीं देंगे। ये वफादारी। और वफादारी का एक दूसरा शब्द है एक व्रत्ता। बाबा के सिवाय कहीं किसी में आंख न जाए, कहेंगे बड़ा वफादार है। पति पत्नी के संबंध में वफादारी होती है, एक व्रत्ता है, एक के सिवाय और कहीं बुद्धि नहीं जाती। हम सब की बुद्धि एक बाबा में टिकी रहे, बाबा मिला सब कुछ मिला, एक बल एक भरोसा, एक व्रत्ता एक नामी। कई सेवाएं करते हैं, पता क्या करते, मेरा नाम हो जाए, मेरा फोटो खिंच जाए, मेरे को कोई स्टेज पर बुला ले, अपना नाम करना चाहता है। एक नामी माना एक का नाम हो। हमारी जितनी सेवाएं हैं, जो कुछ हम सब कर रहे हैं, चाहे जिस विंग से कर रहे हैं, हम सब के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, न कि मैं प्रत्यक्ष हो जाऊं। ये विंग बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है, वो विंग नहीं कर पा रहा है, वो कैसे कर रहा है। कई लोग तो पता नहीं फोटो खिंचाने के पीछे, नाम के पीछे कितना भाग रहे हैं, अपना नाम करने के लिए, अपने विंग का नाम करने के लिए। और बाबा कहता है तुम एक का नाम बाला करो। शिव बाबा को कितने लोगों ने पहचाना, जो कुछ किया, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम सबका एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है कि एक का नाम बाला हो जाए। बस जैसे उसने हमें बाला किया, प्रत्यक्ष कर दिया, बाबा ने तो हमें सबको प्रत्यक्ष कर दिया ना, सब जान गए कौन है। अब हमारी चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से, हमारी त्याग और तपस्या से हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए बस। कई बार बाबा एक शब्द कहते हैं, बच्चे तुम ज्ञान सुनाओ और तुम गुम हो जाओ, तुम्हारी जगह बाबा दिखाई देने लगे। ऐसा हो सकता है ना। जितना हम बाबा मैं हो करके बाबा की याद में कोई शब्द बोलते हैं तो बाबा ही दिखाई देने लगता, बाबा के सिवाय और कौन है। ऐसे वफादार बनना है। और तीसरा है योग के लिए सच्ची ईमानदारी, ऑनेस्टी। बाबा को ऑनेस्ट बच्चे, ईमानदार बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, जो हैं जैसे हैं, अंदर और बाहर एक हैं, कथनी और करनी समान है। ऐसे नहीं कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अंदर कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, दिखाते हैं योगी हैं और अंदर से ढोंगी हैं। इस पर ध्यान देना, ऑनेस्टी नहीं है। बाबा की पढ़ाई जो हम बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हमें अंदर बाहर एक बनाना सिखाती है। हमारी दृष्टि वृत्ति इतनी पवित्र है, शुद्ध है, शुभ चिंतक है। बाबा ने जो पढ़ाया है वो हमारे जीवन में है, अगर दिखाई दे रहा है इनके जीवन से तो ये ऑनेस्टी है। और जो कुछ बाबा ने दिया है उसकी अमानत है। ऑनेस्ट वो है जो अमानत में ख्यानत नहीं करता। हमने तो बाबा को सब अर्पित किया, ये तन ये मन ये धन ये सब तेरा है, और बाबा कहता है जब तूने कह दिया तेरा है तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा, अब मैं कहता हूं तुम इसको संभालो, मेरी अमानत समझ के संभालो। इसलिए बाबा की अमानत, ये तन उसकी सेवा में ही लगे, कहीं गलत रास्ते पर पांव न चले जाए, इस पर ध्यान देना, नहीं तो अमानत में ख्यानत हो जाएगी। मन केवल मन मनाभव, कोई इधर उधर के विचार नहीं कर सकता। एक बाबा की सेवा, एक बाबा के सिवाय और कोई मन में संकल्पों की उत्पत्ति न हो, इस पर ध्यान दो। ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, यहां ऐसे होता, वहां ऐसे होता। और आजकल की न्यूज के अंदर हमारी सोशल मीडिया ने एक छोटी सी बात को इतनी फास्ट गति से फैलाता है, जो यहां की बात पता नहीं फटाफट सारी दुनिया में फैल जाती है। कई बार होता छोटा सा कुछ कारण है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात बन करके फैलती है, जो कई ब्राह्मण आत्माएं भी अनेक प्रश्नों में उलझ जाती है। ऐसा होता, ऐसे हुआ, वो हुआ। अरे बाबा कहता है जो हुआ हो रहा है, होने दो, तू अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ रहा है। इसलिए अपने संकल्पों को प्रभु अमानस समझो, इसमें कोई भी वेस्टेज की लीक न रहे। लीकेज रह गई तो क्या होगा, जितनी शक्तियां ऊपर से आएंगी, व्यर्थ की थोड़ी सी लीकेज सारी शक्तियों को नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी। किस लिए सोच रहे हैं हम, जब बाबा बैठा है, बड़े बैठे हैं, कहीं गया नहीं है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, करावन हार बन के करा रहा है, फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हम अपने मन के संकल्पों को, प्रभु अमानत को क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में क्यों खत्म कर रहे हैं, क्यों ख्यानत कर रहे हैं। धन प्रभु ने जो दिया है, ऐसे नहीं कहता है कि खाना नहीं पीना नहीं, सब कुछ करो, धन जो है सही रूप में सफल करो, और जो योग्य बच्चे सपूत होते हैं उसको वृद्धि करते हैं, विस्तार करते हैं, खूब बढ़ाओ, और बढ़ता है दान करने से। कहते हैं धन दिए धन ना कुटे, जो हमारे पास है बाबा ने दिया है, अगर हम उसको ईश्वरीय सेवाओं में सफल करते हैं, श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं, चाहे वो गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, ज्ञान धन है या स्थूल धन है, अगर बाबा के कार्य में सफल हो रहा है तो एक का कई गुना रिटर्न देने के लिए बाबा बना हुआ है, करेगा, देगा। लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते हैं, बड़ी रमणीकता से बोले तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, इतना मेरे से क्यों बोला जाता है, जो करना है बाबा ने क्या किया, इस हाथ से किया, इस हाथ को पता नहीं चला। गुप्त दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य ब्रह्मा बाबा ने किया और नंबर वन बन गया। हम सब पूछा पूछी क्यों कर रहे हैं, अगर बाबा का दिया हुआ है उसके ईश्वरीय कार्य में सफल हो गया तो धन्य भाग्य मेरा, भगवान ने मेरा स्वीकार कर लिया। तो आप सभी अपने तन मन धन की, समय संकल्प श्वास की, जो प्रभु अमानत है, उसको कहीं पर भी व्यर्थ नहीं करो। ऑनेस्ट बनो इसमें, ईमानदार, योगी बन जाओगे, योग लगाने की मेहनत है ही नहीं। और फरमान जो मिले हुए हैं, ये शत्रु जो हैं, उन पर जीत पाने के लिए फरमान है। काम क्रोध नरक के द्वार हैं, काम जीते जगत जीत, इन विकारों को फरमान की रीति से मानकर, स्वीकार करके शिव बाबा ने कहा है बच्चे इनको जीत लो, कुछ भी हो जाए अभी इनसे हार नहीं खाना, इन पर विजयी बन जाओ। परसों नरसों एक वरदान था, मैं रमणीकता से पढ़ रहा था, ऐसे ध्यान नहीं जाता, लेकिन अचानक देखा उसमें था, बच्चे माया का आवाहन करो। माया का आवाहन करने के लिए बाबा ने कब कहा है, आवाहन करो, आएगा तब तो तुम विजय प्राप्त करोगे। और तुम्हारी नशा रहना चाहिए, स्मृति रहना चाहिए कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, और कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए माया आएगी और हमको उसको जीत करके विजयी बनेंगे। चिंता नहीं करो क्यों आ गई, कहां से आ गई, मेरे सामने ही क्यों आ गई। अरे क्यों प्रश्नों में उलझ रहे हो, प्रसन्न चित्त रहो, आई है चली जाएगी, सोच सोच के भारी नहीं हो जाओ। कईयों को थोड़ा सा कोई गलत स्वप्न आ जाए, संकल्प इतना सोच लेते हैं जो योग नहीं लगता है, परेशान हो जाते हैं। बाबा कहता रे आगे छोड़ो ना, बीती को बिंदी लगाओ, किस कारण से आया उसका निवारण करो। कारण कुछ हो सकता है, आपकी दिनचर्या अलबेलेपन की है, आपने कोई ऐसे दृश्य देखे हैं, ऐसे श्रव्य सुने हैं, गीत सुने, ऐसा भोजन कर लिया तेज गरम, कोई विचार गलत आ गए, ज्यादा उसकी चिंता नहीं करो, उसको फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ जाओ। इसलिए बाबा के बच्चे भगवान के फरमान को समझें तो जो आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं और फरमान बरदार हैं, वो सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बन ही जाते हैं। सिर्फ योग के लिए ये नहीं कहो मैं बिंदु ही बन जाऊं, बिंदु बिंदु करके भारी नहीं हो जाओ। कभी हम ज्ञान चिंतन करते हैं, कभी अपने ऊंचे स्वमान की स्मृतियों में रहते हैं, कितने बाबा ने स्वमान दिए हैं, कभी फरिश्ता बनकर के बाबा के साथ सेवा करते हैं, पूरे वर्ल्ड में सकास देते हैं, कभी बीज रूप बनकर के निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो जहां वैरायटी है, जहां नवीनता है, वहां सहज है और निरंतर है। वैसे बाबा मुरलियों में, साकार बाबा की मुरलियों में आता है, बच्चे कम से कम योग का 8 घंटे का चार्ट बनाओ, 24 घंटे की दिनचर्या को ऐसे बांटो, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए और 8 घंटे ईश्वरीय कार्य बाबा के लिए, कम से कम 8 घंटे की योगी बनो। लेकिन अव्यक्त बाबा ने कहा अच्छा 8 घंटे 6 घंटे योग करते हो, बाकी क्या करते हो, किसको याद करते हो, कौन है तुम्हारा? इसलिए तुम निरंतर योगी बनो। और निरंतर योगी एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती, उसमें उसमें आपको वैरायटी करना है, नवीनता करनी है, रोज नए ढंग से करो। आज आत्मा के 7 गुण हैं, 7 गुण संपन्न, अगर वो 7 गुणों में रोज शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वैरायटी है, कभी साकारी याद, कभी आकारी याद, कभी निराकारी याद, कभी पूर्व स्वरूप, कभी पूज्य स्वरूप, अगर इस प्रकार से वैरायटी करेंगे और नए नए ढंग से करेंगे, एक जैसा नहीं, कई बार अमृत वेले उठते हैं बैठते हैं लेकिन बाबा कहते हैं हठयोगियों का म्यूजियम देख लो, यहां ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कोई ऊपर से देख रहे हैं, लहरों में लहरा रहे हैं, निद्रा देवी उन पर वार कर रही है, ऐसा योग किस काम का? बड़ी रमणीकता से, प्यार से बाबा से रूह रिहान करो, बातें करो, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, ज्ञान चिंतन करो, वरदान चिंतन करो, और चिंतन करते करते लगन में मगन हो जाओ। तो जितना वैरायटी और नवीनता से करेंगे उतना सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। बाकी अभी फरियाद का समय पूरा हो गया, फरियाद नहीं करो, याद करो, ठीक है? समय पूरा हुआ है, दीदी हमारी मोहिनी दीदी आने वाली है, इसलिए हम 5 मिनट के लिए अशरीरी स्थिति में बैठेंगे। अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ और सर्वशक्तिमान बाबा की सर्वशक्तियों का अनुभव करो, उन किरणों का अनुभव करो।